प्रियजनों, आज 28 अगस्त 1920 का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। मैं गीता अध्याय 11 का 10वां श्लोक 15वां श्लोक ही कहती हूँ। पहले समझो वाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दशाय मासाय परमं रूपं ऐश्वरम। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वर विराट रूप दिखाया। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान ना हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। श्लोक 10। अनेक वक्त्रम नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेको धता युधम। दिव्या आलम्बरम धरम दिव्या गंधानु लेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूप वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। इसको दिखाया अर्जुन को। यहाँ पर आप देखते हैं कि संजो वाच आया बीच में क्यों आया। ये संजय जो है वो धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का दृश्य देखता है और फिर अंधे धृतराष्ट्र को बताता है, व्याख्या करता है। श्लोक 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवे दुग पदत्पिता यदि भाषा ऋषि सा स्याद भाषा सतस्य महात्मना। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबको प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के सामने शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता है। भगवान में इतना प्रकाश है। यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह तो भौतिक ही है, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं है। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। श्लोक 13। तत्रे कस्यम जगत कृष्णम यो विभक्त मने कदा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इसमें अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। क्या देखा? अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में संपूर्ण देशों को। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज स्थावर जंगम नवचर जलचर थलचर 84 लाख योनिया चौदह भूर आदान आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत देखो, यहाँ पता चलता है कि हमारा जगत कितने भागों में विभक्त है। क्या बताया उन्होंने? जरायु अंडज उद्भिज स्वेदज योनिया चार किस्म की स्थावर जंगम नवचर जलचर थलचर 84 लाख योनिया और 14 भुवन सब कुछ भगवान में देख ली। भले ही अनंत हो पर है वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जब भी दृष्टि डालते हैं वही उन्हें अनंत जगत दिखता है। देखो, हमारे लिए तो जगत एक है, लेकिन अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो उनके प्रत्येक अंग में एक एक जगत देखा, तो विराट रूप कितना आश्चर्यमय होगा। श्लोक 14। तथा स विस्मया विष्णु ईश्वरोमा धनंजया तन्मय शीर्षा देव गीतांजलि भाषित। भगवान के विष्णुमुख को देख कर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विष्णुमुख देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अभी तक तो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे ना, तो अब क्या सुना रहे थे कि अर्जुन ने क्या देखा। अब अर्जुन बोलते थे, जब उन्होंने अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा तो उनके मुंह से क्या शब्द निकले। तो कहते हैं अर्जुन वाच श्लोक 15, पश्यामि देवास्तव देव देहि सर्वास तथा भूत विशेष संगान ब्राह्मणेशम कमलासनस्थम विशिष्ट सर्वान गंगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, शंकर जी को, संपूर्ण विष्णु को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। श्लोक 16, अनेक बाहुद भक्त ऋतु पश्याम ताम सर्वतोनंत रूपम नंतम न मध्यम पुनस्तवादम पश्याम विश्वेश्वर विश्व रूपा। हे विश्व रूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों केतों मुखों नेत्रों वाला तथा सब से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को न मध्य को न अस्त को ही देख अंत को ही देख रहा हूँ। बड़ा आश्चर्यचकित है अर्जुन, रोमांचित है और जो कुछ वो देख रहे हैं वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोल भी रहे हैं कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ। भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। भगवान साकार हूँ या निराकार, सगुण हूँ या निर्गुण, बड़े से बड़े हूँ या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना जीव का त्यों ही रहता है। श्लोक 17, गदिनम च किनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्ति अनंतम पश्यामि त्वां दुमीक्षम स्मन्ता दीप्ता नलाक द्वितीय अपमेयम। मैं आपको कीट मुकुट गदा चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ, विष्णु के रूप में देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि सब प्रकाश वाले दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अपने स्वरूप देख रहा हूँ। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी भगवान ने देखी दिव्य दृष्टि, तब ये सब देखा। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में समर्थ नहीं हो, फिर भी मुश्किल है, देखना मुश्किल है, देख रहे हैं पर आँख नहीं टिकती। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। तो हम लोग जिन्हें भगवान की शक्ति प्राप्त नहीं होती वो भगवान के विराट रूप को क्या देखें। इसलिए हमें ज्ञान करना चाहिए, ये जो कुछ भी स्थावर है, जंगम है, जड़ है, चेतन है, 84 लाख योनियां है, सूर्य है, चांद है, तारे है, पृथ्वी है, बादल है, जल है, ये सब भगवान के रूप है। श्लोक 18, तमक्षम परमं वेदितव्यम तमस्या विश्वस्य परम निधानम तवम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तु पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अक्षर ब्रह्म है। आप इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप इस सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ये विनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्जुन बोलते जा रहे हैं स्वरूप को देख करके, भगवान के विराट रूप को देख करके। श्लोक 19, अनादि मध्यांत अनंत व्ययम अनंत बाहु सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तोताश भक्तम स्वतेजसा विषिदम तपन तप। आपको मैं आदि मध्य सहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। अर्जुन ने जो कुछ देखा उसी की व्याख्या भगवान व्यास देव जी ने महाभारत में एक विषय है, एक अध्याय है जिसमें गीता जी का वर्णन मिलता है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है। तो उसी गीता में भगवान का रूप अर्जुन देख रहे हैं और अपने श्रीमुख से व्याख्या भी करते जा रहे हैं। श्लोक 20, धावा पृथ्वी योद अनंतरम ही व्याप्तं तो एक विशिष्ट सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूप उग्रम त्वेदम लोकप्रियम प्रदर्शितम महात्मना। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। तो जो खाली जगह देखिए, स्वर्ग का ऊपर पता नहीं कहाँ है और हम यहाँ पृथ्वी पर और नीचे पाताल है। तो अर्जुन क्या कह रहा है, कह रहा है इसके बीच में जो जगह है उसमें क्या है, भगवान आप ही समाये हुए हैं। आपके सद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। तीसरा लोग कौन सा, पाताल लोग। अब मैं आपको श्री महाराज जी के एक प्रसंग की ओर ले जाती हूँ। श्री महाराज जी ने कैसे अपने विद्या शक्ति से और निष्काम कर्मियों द्वारा श्री महावीर तीर्थ का प्रागट्य किया है। श्री महादेवी तीर्थ का प्रकट्य, तीर्थ सदैव अवतारों के तप त्याग से प्रकट होते हैं। समस्त लोकी में पृथ्वी को तीर्थ माना जाता है। समस्त लोकी में पृथ्वी को क्या माना जाता है, तीर्थ। जैसे हम कहते हैं महादेवी तीर्थ है ना, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है ना, ये तीन लोगों में एक महातीर्थ है। तीन लोक कौन सी है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नरक लोक, पाताल लोक बोलते हैं उसको। तो उनमें पृथ्वी को तीर्थ माना जाता है और पृथ्वी में भी जम्बू द्वीप एशिया और जम्बू द्वीप में भी भारत भूमि को तीर्थ माना गया है। भारतवर्ष तीर्थ भूमि है। वैदिक काल से इस पावन भूमि भारत में स्मृतियों पर तीर्थों का प्रकट्य होता आया है। तीर्थों का प्रकट्य भगवत इच्छा से होता है तथा तीर्थों के प्रकट्य के माध्यम से तपस्वी श्रेष्ठ ऋषि मुनि ही होते हैं। ये संयमी तपस्वी श्रेष्ठ ऋषि मुनि अपनी तपस्या के पुण्यों के फल का प्रयोग अपने लिए नहीं, अपने विश्व के लिए, मानवता के लिए करते हैं। तीर्थ स्थल किसी व्यक्ति विशेष या गुरु विशेष से संबंधित न होकर विश्व की पूंजी होता है। तीर्थों का दर्शन करना, तीर्थों में स्नान करना, जप तपस्या करना, प्रभु का भजन करना जीवन का अति उत्तम प्रयोग है। तीर्थों के दर्शन मात्र से भी मनुष्य का कल्याण होता है। मानव की नाना विध गतिविधियों में तो तीर्थाटन एक ऐसी गतिविधि है जिससे मानव का तन और मन शुद्ध होता है और धन सार्थक हो जाता है। वैसे तो समस्त पृथ्वी पावन है, पूज्य है, परंतु वह स्थान जहाँ महापुरुषों ने तप तपस्या साधना और उपासना की है, प्रभु का साक्षात्कार किया है, वह स्थान पवित्र हो जाते हैं और तीर्थ के नाम से विख्यात होते हैं। महामानव की साधना के फलस्वरूप तीर्थ स्थानों में देवताओं का निवास हो जाता है। गंगा सागर तीर्थ जहाँ संख्या अवतार कपिल मुनि जी ने तपस्या की थी, प्राचीन काल से ही प्रख्यात तीर्थ माना जाता है। चित्रकूट का पावन पर्वत, गंगा नदी के तट पर बसे हुए हरिद्वार, त्रिवेणी संगम में प्रयागराज, काशी द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वर आदि अनेक तीर्थ भारत की पावन भूमि पर स्थित हैं। भारत की इसी पवित्र भूमि में माँ भगवती उमा के 51 शक्तिपीठ प्रसिद्ध हैं। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, भगवान श्री राम कृष्ण देव जी की महान साधना से ही विश्व तीर्थ बन गया है। 20वीं शताब्दी में भारत माँ के सन्यासी पोत स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव के नाम की समिति में श्री रामाकृष्ण मिशन बेलूर की स्थापना की थी। इसी प्रकार बहुत इच्छा से प्रेरित एक महामना महापुरुष भिखारी रूप में भारत की वायव्य दिशा पर स्थित एक प्रांत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में सन 1965 में प्रकट हुआ और उस महामना तपस्वी भिखारी अपने में एक अद्भुत कार्य क्षमता धारण किए हुए व्यक्ति और ज्ञान को अपने आंचल में संजोए हुए दिन रात कुशल कर्मठ की भांति सेवारत रहते थे। श्री महादेवी तीर्थ की समस्त गुफाओं का शुभारंभ तथा भगवान के मूर्ति विग्रहों की प्रतिष्ठा का पावन कार्य करने के पश्चात उन्होंने विपाशा नदी के किनारे पत्थरों का चबूतरा बनाकर अन्न क्षेत्र लंगर का शुभारंभ किया और साथ ही निःशुल्क औषधालय में भी को भी स्थापित किया। साथ ही श्री महादेवी तीर्थ के संचालन हेतु शारदा माँ सेवा संघ की स्थापना करके इस तीर्थ को ज्ञान भक्ति सेवा और प्रेम की मूर्ति मान धाम बना दिया। इस प्रकार महामना महामानव ने अपने तप त्याग एवं अथक परिश्रम से वार्षिक गांव के एक पहाड़ी नाले के पास ही श्री महादेवी तीर्थ का प्रकट सन 1965 में किया। करना अवतार बाबा ने श्री महादेवी तीर्थ को देश के लिए समर्पित कर दिया जो आज विश्व तीर्थ के नाम से विख्यात है। उन्होंने क्षेत्र की बारी दीवार पर लिखवाया था, मंदिर की संपत्ति सारे देश की संपत्ति है, इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य है। माँ की गुफा के बाहर लिखवाया था, भावना का फल पाओ। वह कहते थे, श्वास श्वास में जो हरि का नाम सुमिरन करेगा वही परम पद पाएगा। ऐसे महामुनि तपस्वी धरा पर तीर्थों का प्रकट कर धरा को भी तीर्थ बना देते हैं। श्री माँ देवी तीर्थ का प्राकट्य आध्यात्मिक शक्ति है, इसमें सब कुछ अलौकिक और रहस्यात्मक है। इस आध्यात्मिक रहस्यात्मक इतिहास की अनुभूति अंतर्तम हृदय पटल में होती है और ये इतिहास ज्ञान चक्षु से पढ़ा जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनंत शक्ति की उपासना आराधना के फलस्वरूप बाबा जी को जो माँ का देश प्राप्त हुआ उसी का सरल रूप है श्री महादेवी तीर्थ। बाबा देवी वैष्णो श्री इष्ट देव श्री राम जी मेरी राम कथा के मेरी आत्म कथा के केंद्र बिंदु हैं। परम योगी बाबा आत्मा में ही रम किया करते थे, वे आत्मा में ही तृप्त रहते थे, आत्मा में संतुष्ट थे। उस महापुरुष का इस विषय में ना तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन था और ना ही कर्म ना करने से, वे तो निष्काम कर्म योगी थे। समस्त विषय में किसी भी प्राणी से उनका किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं था। वे आसक्त भाव से कर्म लग रहते थे, वे दैनिक कार्य झाड़ू बनाना चाहे बनाना खाना पकाना आदि सब अपने हाथों से किया करते थे। यहाँ तक कि मंदिर में आने वालों के जूते जो द्वार पर खोल दिए जाते थे उन्हें भी साफ करने में से नहीं चूकते थे। वे किसी भी कर्म को छोटा या तुच्छ नहीं मानते थे। इन कार्यों के अतिरिक्त देव मंदिर निर्माण के लिए स्वयं अपने ही हाथों से घंटों तक पत्थर तोड़ते रहते तथा मिट्टी उठाते थे। पथेली चट्टानों के अंतर गुफाओं को साफ करके देव मंदिरों की प्रतिष्ठा के योग्य बनाया। उनमें सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना भी की है। अपने दुबले पतले शरीर के द्वारा ये लगभग 90 वर्ष की आयु तक अनवरत रूप से कार्य करते हैं। वृद्धावस्था या रोग उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सके। मानव मात्र में ही नहीं जीव मात्र में परमात्मा दृष्टि रख कर की गई उनकी सेवा भविष्य में बहुमुखी हो उठे। उनके द्वारा हम क्षेत्र की स्थापना ये दर्शाती है कि नर को नारायण समझकर उनकी सेवा करो। ये क्षेत्र में जाकर सेवा किया करते थे। एक बार एक बुढ़िया माँ के पास बैठकर उसकी थाली से अन्न का ग्रास उठा उठा कर अपने हाथों से उसे इतने प्यार से खिला रहे थे जैसे माँ अबोध शिशु को खिलाती है। उसमें उनकी भावावस्था को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बाबा जी जग जननी माँ देवी को ही भोग लगा रहे हों। सेवा रतन अनमोल है, इस रतन को संभाल कर रखना उत्तम धर्म है। सेवा रत बाबा जी से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है तो वे बोले क्या रखा है इस नाम में, सेवा के लिए आया हूँ इसलिए सेवक दास कह लो। ये कहा करते थे निष्काम सेवा ही पूजा है। उन्होंने कभी भी नाम या यश की कामना नहीं की। अपने नाम वे हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में रहते थे। बाबा जी के अनुसार दानों में श्रेष्ठ है अन्नदान। अन्नदान का मूल है ज्ञान, ज्ञान के लिए अनिवार्य है भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 3 श्लोक 14-15 अनाथ भवन त्रिभूतानि परजन्याद न संभवा यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठित। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती है, दृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। गीता के इन श्लोकों का भली भांति मनन करके बाबा जी ने भूत यज्ञ की स्थापना की। इनके अनुसार प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है जहाँ वह निष्काम भाव से किया जाता है। श्री महादेवी तीर्थ के द्वारा बाबा जी ने सनातन मूल्यों को मूर्त रूप प्रदान किया। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए बाबा स्वयं शस्त्र विहित कर्म भली भांति करते हुए तो हम सब भक्तों से भी संपर्क में आने वालों से भी शस्त्र विहित कर्म ही करवाते थे। बाबा जी ये जानते हुए भी कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार की प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं अर्थात उन्हीं गुणों में बरतते हैं। कर्म करने को भगवत सेवा समझना चाहिए, ये समझकर कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। बाबा जी अपना चित्त परमात्मा में लगाकर संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को ही अर्पित कर देते थे। बाबा जी गुण विभाग और कर्म विभाग मन बुद्धि अहंकार 5 महाभूत 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां 5 विषय स्पर्श रूप रस गंध इनके संप्रदाय का नाम गुण विभाग है तथा इनके परस्पर जस्तों का नाम कर्म विभाग है। ये आत्मा को निर्लेप जानते हुए सदा सर्वदा कर्मशील रहते थे। उनका प्रिय कथन था क्रोध को पियो काम को खाओ। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है, मन बुद्धि एवं इंद्रियों में काम वास करता है और ज्ञान को आच्छादित कर देता है। इससे जीव आत्मा मोहित हो जाती है, इसलिए इंद्रियों को वश में करके ही काम का नाश किया जा सकता है। स्थूल शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा को जानने के लिए आत्म संयम की आवश्यकता है। बाबा जी आत्म संयमी थे, उनके निपटाने पर मन तथा अन्य इंद्रियां भी भक्ति का अनुभव करती थी। मैंने भी तथा अन्य भक्त जनों ने भी ये अनुभव किया कि उनके संग मात्र से ही हमारा मन और इंद्रियां सीमित हो जाते थे। बाबा जी के सन्मुख आने वाले प्रत्येक मानव को ही नहीं अपने जीव मात्र को प्रेम मिला। आत्मदर्शी बाबा दिन रात सेवा द्वारा भगवान की सृष्टि में सहायक रहते थे। उत्सर्ग उनका जीवन था। बाबा के दिव्य कर्मों से पता चलता है कि उनका जन्म भी दिव्य ही होगा। भला ही उन्होंने अपनी जन्मभूमि माता पिता के विषय में कुछ नहीं बताया। भगवान के अनन्य प्रेम में स्थित बाबा सब कर्मों को करते हुए भी कर्मों में वैसे लिप्त नहीं हुए जैसे कीचड़ में खेलने वाला कमल कीचड़ में लिप्त नहीं होता। ब्रह्म नक्षत्रियों शुद्ध इन चारों वर्णों के प्रति बाबा जी का संभाव था। किसी भी वर्ण का प्रेमी भक्त जब बाबा के पास बैठकर अपना सुख दुख सुनाता तो बाबा जी इस भाव से उसकी सेवा करते मानो स्वयं भगवान ही आ गए हो। समस्त कर्मों को करने वाला योगी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। सब कुछ करते हुए भी कर्तापन का भाव ही कर्म में से अकर्म को देखता है। कुछ न करते हुए पाने मात्र का भला चाहना ही अकर्म कर्म है। बाबा बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में ही संतुष्ट रहते थे। वे हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त थे, इसलिए कर्म करते हुए भी वे कर्मों में नहीं बंधे। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय कर्म योगी बाबा ने इस ज्ञान की प्राप्ति शुद्ध अंतःकरण में ही की थी। तो ज्ञान प्राप्ति होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। बाबा जी विद्या व विनय संपन्न ब्राह्मण में भगो हाथी कुत्ते चंडाल में भी समदर्शी बने रहे। जीवन अवस्था में जिसने पूर्ण संसार को जीत लिया था जैसा देव सच्चिदानंद परमात्मा ही में स्थिर रहे तथा शांत भाव को प्राप्त हुए। संकल्प का त्याग करके ही मानव योगी बनता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाले बाबा विकार रहित एवं जितेंद्रिय थे। मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण उनके लिए सम था। समता योग में स्थित प्रज्ञा बाबा सुहृद मित्र बैरी उदासीन धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखने के कारण अतिशय लोकप्रिय हुए। बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कितनी बार खाते हैं? संचित बाबा जी ने उत्तर दिया, जब भूख लगती है तो खा लेता हूँ। क्यों पूछा, बाबा जी आप सोते कम है? बाबा जी ने कहा, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। बाबा जी वचन युक्त आहार विहार का संकेत देते थे। वे प्राय कहा करते थे, खाने के लिए मत खाओ, जीने के लिए खाओ। स्वयं को इंगित करते हुए कहते, बाबा तो जीने के लिए ही खाता है। बाबा जी अल्पहारी थे। श्री महादेव तीर्थ की स्थापना करने में बाबा जी को कई प्रकार के भारी दुखों का कष्टों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान लेने को भी उतारू हो गए। परंतु बाबा जी कहते, यदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भले ये जीवन जाए, परमात्मा की प्राप्ति ही तो जीवन का सर्वोत्तम लाभ है, जीवन का परम उद्देश्य है। बाबा जी हर परिस्थिति में आनंद मग्न रहते क्योंकि उनका सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव था। इन शब्दों के साथ जय माता दी गीता माँ।